Om Namah Siddhaya. Om Namah Siddhaya. Om Namah Siddhaya. Om Shuddhatmane Namah. Namo Arihantam. Namo Siddhaya. Namo Ayariyanam. Namo Vachayanam. Namo Loe Sauvasam. यहाँ हम प्रयोजनभूत सात तत्वों की बात देख रहे हैं। सात तत्वों के नाम हमने देखे हैं, याद है पूर्वी सात तत्व। हाँ, जीव तत्व कहेंगे ना तो। हाँ,
अजीव तत्व, आश्रम,
हाँ,
बंध
तत्व,
गिरजरा तत्व,
के पहले
संवर,
हाँ
संवर तत्व, निजरा तत्व।
बहुत अच्छा। जीव तत्व, अजीव तत्व, आश्रव तत्व, आश्रव कहना, आश्रव नहीं कहना, आश्रव तत्व, बंध तत्व, संवर तत्व, निर्जरा तत्व और मोक्ष तत्व, ये तो हमने नाम देखे। जीव तत्व की जो सामान्य आगम की अपेक्षा परिभाषा देखी थी कि जिसमें ज्ञान दर्शन आनंद स्वभाव है वह जीव तत्व है, ये तो सामान्य रूप से हुए, परंतु यहाँ अध्यात्म है। अध्यात्म का अर्थ होता है अपने आत्मा का अनुभव करना, तो अपनी मुख्यता से हम बात करेंगे। तो यहाँ कहेंगे मेरी अपेक्षा, जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन है उसी को जीव तत्व कहेंगे, और मेरी अपेक्षा अन्य अनंत जीव वो सारे अजीव तत्व में जाएंगे। अन्य सारे पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये तो अजीव द्रव्य भी है, पर इन एडिशन अन्य जो जीव है मेरे अलावा वो भी सारे अजीव तत्व है, क्योंकि उनमें मेरा ज्ञान दर्शन नहीं है। आश्रव तत्व में हमने देखा था कि दो भेद करने, अभी ये आगे के सारे पर्याय तत्व है, उसमें द्रव्य और भाव ऐसे दो दो भेद करेंगे हर एक में। द्रव्य में कर्म की अवस्था और भाव में जीव की अवस्था। जीव के जो आश्रव है वो तो सामान्य कहना है तो मोह राग द्वेष के परिणाम लिखना, और उसके विशेष भेद करेंगे तो मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये सारे आश्रव है। इसको भाव आश्रव कहते हैं, क्योंकि ये जीव के पर्याय में उसके विकारी भाव है। पुद्गल में कैसे घटित करना, आश्रव का अर्थ होता है आना, कार्माण वर्गणा कर्म रूप परिणमित होते हैं, उसको हम समझाने के लिए कहते हैं कर्मों का आना, उसको हम द्रव्याश्रव कहेंगे। बंध में जीव शुभाशुभ विकारी भावों में ही अटकता है, उसी में उसकी रुचि पड़ी है और वही करते करते रहता है, तो उसको हम कहेंगे वो भाव बंध है। और यहां द्रव्य बंध में ये जो कर्म बने अभी नए है वो पुराने कर्मों के साथ जुड़ जाते हैं, उसको कहेंगे द्रव्य बंध। या हम ऐसा भी कहेंगे कि कर्मों का आत्मा के साथ बंध जाना, पहले कहा था आना और अभी कहेंगे बंधना, तो ये बंध हुआ। अब हम संवर को देखने जा रहे हैं, तो संवर में भाव संवर में किसको लेना, वीतरागता की उत्पत्ति अभी शुरू होना, तो उसी को हम शुद्धि कहेंगे, आत्मा की शुद्ध पर्याय। हमने शुभ, अशुभ और शुद्ध ऐसे तीन भेद करेंगे। शुद्ध का अर्थ क्या है, वीतरागता, जो शुभ और अशुभ नहीं है वो क्या है, वीतराग। शुभ और अशुभ मिलकर हम राग कहेंगे और यह है वीतराग, राग का उत्पत्ति ही नहीं होना। यहां तो शुरुआत हुई ना वीतरागता की। तो हम अभी यहाँ पढ़ेंगे हम संवर तत्व, आपके पास पुस्तक है ना उसमें से पढ़ेंगे। आश्रव का रुक जाना इसे संवर कहते हैं। आश्रव यानी अभी जो वहां विकारी भाव होते हैं वो कैसे रुकेंगे, तो शुद्ध भाव प्रकट होगा तो विकारी भाव उत्पन्न नहीं होगे, तो हम उसको कहेंगे रुक गए। पर ये तो स्थूल परिभाषा है, क्योंकि अभी चौथे गुणस्थान में वितरागता की शुरुआत हुई है, पूर्ण वितराग नहीं हुआ है। अब दो धारा एक साथ चलेगी। हम चार प्रकार के राग देखते हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन। चारों ही चल रहे थे तो वीतरागता बिल्कुल नहीं थी, इनके साथ मिथ्यात्व भी था। अब मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी एक साथ अभाव होता है, उदय नहीं है, तब यहाँ वीतरागता की शुरुआत हुई। चौथा गुणस्थान अविरत सम्यक दृष्टि। अब ये राग और घट गया, यहाँ वीतरागता और बढ़ी, तो इसको हम कहेंगे वो देश विरत गुणस्थान। ख्याल है ना, अभी दो चौकड़ी है परंतु यहाँ वीतरागता बढ़ी है, उसको देश चारित्र भी कहेंगे। अब यहाँ और एक कषाय चौकड़ी चली गई, वीतरागता बहुत बढ़ गई, तो इसको हम कहेंगे संयमी हो गए, प्रमत्त अप्रमत्त विरत सभी ऊपर के जो है, क्योंकि अभी तीन कषाय चले गए हैं और यहाँ संयमी हो गए, सकल चारित्र हुआ है। परंतु अभी यहाँ संज्वलन क्रोध मान माया लोभ बाकी है, ये भी चली जाएगी तो पूर्ण वीतराग होगा। पूर्ण वीतराग का गुणस्थान कौन कौन से है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ देखो, ऐसे हम अभी विचार करने की पद आ गई ना आपको, अभी तो ग्यारहवा भी है क्योंकि वहां इसका उदय नहीं है, भले अंतर्मूर्त तक है, पूर्ण वीतराग है। बारहवा भी पूर्ण वीतराग है, अभी सर्वज्ञ नहीं हुआ है। जब तेरहवा हो जाएगा, सर्वज्ञता प्रकट होगी, तो हम उसको कहेंगे वीतराग सर्वज्ञ, यानी संयोग केवल। जब योग भी मिटेगा तब कहेंगे अयोग केवल। कोई भी विषय ले लो ना, तो उसमें हम अन्य जो हम विषय सीखे है उसके कोरिलेशन हमें करना है। तो यहाँ क्या कहते हैं, आश्रव का रुक जाना संवर कहते हैं। लोग क्या मानते हैं, पहले पाप का आश्रय होता था, जब पुण्य करते तो पाप रुक गया, तो क्या उसको संवर कहेंगे क्या नहीं कहेंगे? नहीं कहेंगे, क्यों? वीतरागता उत्पन्न हुए बिना संवर नहीं होता। जब हम पुण्य करते तो पाप रुक गया है, परंतु वो थोड़े टेम्परेरी रुका, फिर पाप करने लगेंगे, फिर पुण्य भी रुक जाएगा, तो पुण्य रुकेगा तो उसको भी संवर कहना पड़ेगा, तो ये नहीं हो सकता। जब पुण्य पाप दोनों ही नहीं होते और यहाँ शुद्ध भाव प्रकट होता है, वीतरागता प्रकट होती है, तब हम उसको संवर कहेंगे। चौथे गुणस्थान में वीतरागता है, यानी वो एक कषाय का अभाव हुआ है, और यहाँ जिसको स्वरूपाचरण चारित्र है, इतनी वीतरागता चालू हो गई और साथ साथ तीन कषाय चौकड़ी बाकी है, ये दोनों एक साथ चलते, चारित्र गुण के पर्याय में दोनों ही है एक साथ। जैसे हमने पानी का ग्लास मंगवाया है, थोड़ा कम कर दिया पानी उसमें से, थोड़ा खाली है और बाकी भरेला है, 1/4 खाली है और 3/4 भर गया है, ऐसे ना, तो अभी 3/4 कषाय है और 1/4 यहाँ वीतरागता है। ये समझाने के लिए हो, यहाँ ऐसे कोई 1/4 3/4 नहीं होता है, थोड़ी वीतरागता है और यहाँ बाकी कषाय है, एक साथ चल रहे ना, ये खाली ग्लास और भरा हुआ ग्लास, कोई अलग अलग ग्लास की बात नहीं, एक ही है वो, ऐसे यहाँ एक ही पर्याय में चलता है। जब यहाँ वीतरागता बढ़ती तो यहाँ कषाय और घट गए, वीतरागता और बढ़ी तो कषाय और घट गए, संपूर्ण वीतराग हुआ तो बिल्कुल कषाय नहीं है।
हाँ, और वो जाता है तो क्रोध मान माया लोभ से जाता है ना।
हाँ, पहले क्रोध, ये पहले क्रोध मान जो जाता है ना, वो नौवे गुणस्थान में जाता है। तब तक तो क्या है, अभी छठा सातवा गुणस्थान है, मान लेते मुनि है, तो कभी क्रोध कभी मान, वो चारों ही अलट पलट चलते हैं, परंतु है सभी संज्वलन प्रकार के, संज्वलन के कभी क्रोध कभी मान कभी माया कभी लोभ, ऐसे चलते रहते हैं, वो पल उलट पुलट कोई भी होता है। मुनि के योग्य है मंद, परंतु वो एक ही कषाय नहीं चलेगा। जब श्रेणी चढ़ते हैं तब किसी एक कषाय का उदय होगा उसमें से, और फिर एक एक का उदय मिटता है, उसकी लंबी बात है। तो वहाँ
उनको कोई अलग को बता जाए,
आप बोलते हैं ना कि एक जाएगा तीन की चौकड़ी रहेगी, फिर दो जाएगा दो की, तो वो
चौकड़ी जब रहती, चौकड़ी में तो चारों ही लेना, अनंतानुबंधी गया कहते ना, तो अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ गए। देखो ये नहीं, मैं फिर से बताती हूँ, जब हम अनंतानुबंधी कहते हैं चौकड़ी कहते हैं, चौकड़ी का अर्थ होता है क्रोध मान माया लोभ सभी, यानी अकेले क्रोध का अनंतानुबंधी नहीं कहा है, ये क्रोध ये मान ये माया ये लोग ऐसा नहीं है, इसमें भी क्रोधमान माया लोभ है, इसमें भी क्रोधमान माया लोभ है, इसमें भी क्रोधमान माया लोभ है और इसमें भी है। ये हरेक की जाति जुदी, हरेक के अपने अपने क्रोध मान माया लोभ है। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ चार गए, चौकड़ी करते चार, जैसे हम कहते ना ये तो युगल यानी दो, चौकड़ी यानी चार, ये चारों ही चौकड़ी यानी एक चौकड़ी में चार आ गए। अभी जो क्रोध रह गए वो तीन टाइप के क्रोध रह गए। जब हमें जो क्रोध आता है ना तो चारों का उदय चलता है। जब कोई क्रोध
अनंतानुबंधी यानी क्या, जब हम पृथ्वी का
तो जब क्रोध चल रहा है तो चारों का चल रहा है हमारा। तो आप कहेंगे ये तो मंद क्रोध है, एट ए टाइम चारों कैसे चलते हैं? जो हमारा परिणाम है उसमें उदय किस किस का, ये तो कर्मों के नाम है। तो चारों प्रकार के क्रोध कर्म का उदय चल रहा है, इसके प्रेजेंस में ये बाकी तीन भी उतने ही उदम मचाते हैं, यानी वो भी इतना ही तीव्रता से काम करते हैं। ये नहीं रहेगा तो ये भी मंदता से काम करेंगे। जैसे हमारे चार पांच छह बच्चे यहाँ उधम मचाते, बहुत उधम मचाते, तो हमें मालूम है उसमें से किसी एक बच्चे के कारण वो बाकी हाँ? तो एक को आप उठा के बाहर भेज दो तो बाकी उस मात्रा में शांति ऐसे जहाँ अनंतानुबंधी है ना वहां वो स्वंजलन वाला भी उतना ही उधम मचाता है। क्या उधम मचाता है? अनंतानुबंधी का क्या कार्य है? सम्यक तो नहीं होने देता, यानी वैसे है ये तो देशघाती कहते, परंतु इसके प्रेजेंस में ये भी सर्वघाती का काम कर रहे हैं। हाँ, तो ये सम्यक तो नहीं होने देता। ये जाति अलग अलग है, अनंतानुबंधी में भी मंदता और तीव्रता के बहुत भेद है। अनंतानुबंधी भी इतने मंद हो सकता है, क्योंकि हमने देखा है कोई पहले गुणस्थान में है, मुनि दीक्षा लेने का भाव आता है, कितने भाव शुभ भाव ऐसे हो गए उच्च कि ग्रेवेक में जन्मेगा, मुनि दीक्षा ली है उसने। तो मुनि दीक्षा अंगीकार की है तो ऐसे कुछ दिखावे के लिए नहीं किए, समझे ना? सच्चे देव गुरु शास्त्र के श्रद्धा है उसके, इस सब शास्त्रों का अभ्यास किया हुआ है और फिर उन्होंने बाह्य सारे महाव्रत आदि अंगीकार किए हैं और फिर जाके वो ग्रेवेक में उत्पन्न हुआ है, तो इतना तो उसका वहां है, वहां पर चल रहा है उसका। तो उसके परिणाम मंद है कि नहीं? कषाय मंद है, फिर भी कौन सी जाति है? अनंतानुबंधी। अभी मिथ्यात्व हटा नहीं है, तो अनंतानुबंधी जो है उसमें तीव्रता और मंदता के बहुत अलग अलग वेरिएशंस हो सकते हैं। हम क्या कहते हैं? बहुत क्रोध करता है इसलिए अनंतानुबंधी, और ये बहुत मंद है अभी हमें अनंतानुबंधी नहीं है। देखो ऐसा आता है शास्त्र में कि कोई ऐसे ब्लेड से वो काटे भी और उसमें नमक मिर्च डाले
मुनिराज
को, तो भी आंखों की ये लाल भी नहीं होगी, ना ही उसके प्रति क्रोध आएगा, उसको आएगा भी नहीं क्रोध। ऐसा नहीं कि वो क्रोध को दबा रहे, उनके वैसे उस जाति के क्रोध भी नहीं उत्पन्न हुए इतने जिसको हम भला कहेंगे, फिर भी वो जाति कौन सी है? अनंतन। जितना मंद कषाय है उसमें भी उनकी एकत्व बुद्धि है,
करता
लेकिन वो गुस्सा भी नहीं करते
है। होते ही नहीं उनके मन में भी, मन में भी तो भी अनंतानुबंधी, यही तो बात है। हमें क्या करते हैं? हमें गुस्सा कम करना चाहिए। पहले में पहले क्या, आप इतना पढ़ते हो पहले गुस्सा तो कम करो, हम एक दूसरे को कहते हैं ना ऐसा, पर गुस्सा कम किया इसलिए वो अनंतानुबंधी चला गया ये बात नहीं हो सकती। अभी सातवें नरक का नारकी है, सम्यक दृष्टि है, वहां गुस्सा करता होगा कि नहीं? सम्यक दृष्टि हो, अविरत सम्यक दृष्टि, वहां तो झगड़ेबाजी चलती है ना, उनके तो ऐसे ही भाव होते हैं कि एक दूसरे के प्रति उनके द्वेष बुद्धि होती रहती, ऐसे ही वहां सहज नरक के परिणाम है, नरक गति के उदय में जीव के ऐसे ही परिणाम होते हैं। और हम यहाँ देखते हैं कितना एक दूसरे के प्रति जिसको कहते हैं ना हेल्पिंग वृत्ति होती है, कितना एक दूसरे को मदद करते हैं। हम देखते हैं ना कोई जीव है एक दूसरे के लिए कितने केयर करते हैं, पूरे समाज के लिए करेंगे, रिलेटिव के लिए करेंगे, कोई पहचान वालों के लिए करेंगे। हम देखते हैं कि नहीं अपने कोई पहचान वाले ऐसे भी होते हैं फिर भी वो क्या है, जब तक सम्यक दर्शन नहीं तो वो क्या है, सारा अनंतानुबंधी है। दिखावे के लिए नहीं कह रहे, उनके सहज ही ऐसे मंद परिणाम है।
लेकिन मुनि होते उसको तो सम्यक दर्शन होता है,
देखो देखो मुनियों को भी सम्यक दर्शन होता है। एक मुनि ने पहले में पहले उन्होंने बाह्य में मुनि दीक्षा अंगीकार की है। जब कोई भी जीव मुनि दशा प्राप्त करता है तो पहले में पहले बाह्यतः वो अंगीकार करना ही चाहिए। घर में बैठे बैठे मुनि हुआ और बाद में दीक्षा लिए, ऐसा होगा ही नहीं। यदि घर में बैठे बैठे मुनि हो जाता है तो फिर बाहर में दीक्षा लेने की जरूरत क्या है, ख्याल में आता है ना। यदि घर में बैठे बैठे तीन कषाय चौकड़ी का अभाव हो जाए तो फिर दीक्षा लेना, वन में जाना, उनके आचरण करने की क्या जरूरत है। घर में बैठे बैठे केवल ज्ञान भी हो जाएगा। समझ में आता ना, मैं क्या दलील क्या कर, न्याय क्या बताना चाहती हूँ। तो ऐसा ही सहज स्वरूप है कि जिसको ऐसे भावलिंग प्रकट होने वाला है उसके ऐसे सहज परिणाम हो जाते हैं, क्योंकि वैराग्य ऐसा बढ़ता है अभी मिथ्या दृष्टि कोई, तो वो जाके मुनियों के पास जाएगा, मुझे दीक्षा दे दो, ऐसे उनके प्रार्थना करेगा। मुनि भी देखेंगे कि ये तत्व ज्ञान में कितना है, क्या स्वाध्याय है कि नहीं है, कितने ये इसको शरीर की योग्यता है कि नहीं है, ये पाल सकेगा कि नहीं। ऐसे ही शिष्य बढ़ाने के लिए दीक्षा नहीं देते हैं। तो सारी ही बातें कि अभी इस काल में इसके ये सारा निभेगा कि नहीं निभेगा, तो फिर उसको दीक्षा दे देते हैं। उसके भी पहले उसके संघ में रहते, वो चार चार महीने छह छह महीने उन संघ के साथ विहार करते हैं, ब्रह्मचर्य से रहेंगे या क्षुल्लक अलग दीक्षा लेंगे, बाद में पूर्ण मुनि दीक्षा दे देंगे। तो जब देते हैं तब तो अभी मिथ्या दृष्टि है, या कोई चौथे वाला है, कोई पांचवे वाला है। बाद में जब वो ध्यान यानी सामायिक में बैठेंगे, ध्यान करेंगे और आत्मा के अनुभव में उनकी जो डेप्थ बढ़ेगी और तीन कषाय नहीं रहेंगे, तब वे सच्चे मुनि कहलाएंगे। परंतु वो होने के पहले उनको ये व्रत तो अंगीकार करने ही है, सोच समझ कर। जैसे हम जैनियों में बच्चे जन्मते हैं तो हम मधुमांस मध्य का तो त्याग दिलाते ही है ना, उसके बिना तो समय दर्शन नहीं होगा। तो ये बुद्धिपूर्वक जिसको हम कहते हैं सोच समझ कर हम ये सारा त्याग दिलाते। 8 साल तक तो माँ देखती है कि बच्चे अपने बराबर खान पान उनका बराबर है कि नहीं। बाद में बच्चों को समझाया भी जाता है कि ये नहीं खानी है चीजें। तो जब ऐसा विवेक होगा खान पान में, और जो कोई यहाँ मद्य प्राशन कर रहा है, मांस खा रहा है और फिर वो तत्वों की बात कर रहा है, चर्चा कर रहा है, तो उसको तो समय दर्शन होने का कोई चांस नहीं है, ख्याल में है ना। जैसे यहाँ जैसे ये अष्टमूल गुण कहते हैं इसको, अष्टमूल गुण का धारी पहले होता है, बाद में वो तत्व भी सुनेगा, जानेगा, विचार करेगा और समय दृष्टि होगा। वैसे ही पहले बाह्यतः मुनि दीक्षा अंगीकार की जाती है, सभी उनके जितने पांच महाव्रत, पांच समिति, ये सारा ही आचरण होता है। और फिर वो जब अंतरंग में लीन है उस अवस्था में उनको सातवां गुण स्थान प्राप्त होता है, फिर सातवें में से छठे, छठे में से सातवें, ये गुण स्थान में आएगी बात। परंतु पहले बाह्य व्रत लिए जाते हैं और फिर उनके अंतरंग में वो गुण स्थान बढ़ता है, उसके बिना नहीं बढ़ेगा। कल बात आई थी ना, मिथ्या दृष्टि है, पहले गुणस्थान से सातवें में जाता है। कंडीशन क्या है, पहले वो प्रतिज्ञा पूर्वक मुनि दीक्षा लेते हैं। जैसे बनारसी दास ने जो समय सार नाटक लिखा है, तो उन्होंने ऐसे वो सारा पढ़ा अध्यात्म और अपने कल्पना कर ली। तो वो क्या करते थे, चार जना थे कोई मित्र उनके, पढ़ते थे तो घर बंद करके मुनि जैसे रहते थे नग्न दशा में 4-5 घंटे के लिए। जैसे हमने 4 घंटे के लिए त्याग कर दिया कपड़े का, ऐसी थोड़ी मुनि दशा होती है। तो यानी वो कल्पना से ऐसे कुछ बातें करते थे, फिर उनको वहां के कोई एक साधर्मी भाई मिले, उन्होंने समझाया, बराबर गुणस्थानों का अभ्यास कराया, तो उनके बात ठीक समझ में आ गई। इसलिए भी उन्होंने नाटक समय सार जो लिखा है, समय सार के ग्रंथ पर उन्होंने हिंदी में काव्य लिखा है उसका भाषांतर, उसमें उन्होंने गुणस्थान का एक अलग चैप्टर लिख दिया कि जैसे मूल में नहीं है समय सार में, क्योंकि उन्होंने समझा था जैसे मैं अध्यात्म ग्रंथ पढ़कर भी जैसे स्वच्छंदी हो गया था, ऐसे कोई अन्य भी न हो जाए, इसलिए उन्होंने गुणस्थान की चर्चा उसमें जोड़ दी। अपनी बात कहां से निकली थी, पहले मुनि दीक्षा अंगीकार की जाती है और बाद में ये संवर की बात करते हुए हमने देखा कि जब समय दर्शन होता है तो वीतरागता और सरागता साथ साथ चलती है, परंतु यहां जो राग भाव है उससे संवर या निर्जरा नहीं होती, वीतरागता से संवर निर्जरा चल रही है। समझ में है ना, जितनी वीतरागता है उतनी संवर और निर्जरा ज्यादा। संवर का अर्थ है उतने उतने कर्म बंधना रुक जाते हैं, अटक जाते हैं। जैसे कल भाई ने बात की थी ना, चौथा गुणस्थान होता है तो 41 प्रकृतियों का बंध रुक जाता है, तो उतने का संवर कहा। और वहां जितने अधिक मात्रा में कर्म चले जाएंगे उसको हम निर्जरा कहेंगे। यानी यहाँ क्या होता है, वीतरागता की वृद्धि होती है उसको भाव संवर और भाव निर्जरा कहेंगे, और वहां कर्म आना रुक गया है उसको द्रव्य संवर, और जितने अधिक मात्रा में खिर जाएंगे उसको द्रव्य निर्जरा। ये वीतरागता के कारण होते हैं। अब मुनि दशा हमने देखे बहुत वीतरागता है और उनमें एक संज्वलन राग बाकी है, तो निर्जरा और संवर कौन किस कारण हो रहे हैं, इसके कारण। आरोप किस पर करेंगे, इस पर आरोप हो सच नहीं। तो मुनि क्या करते हैं, तो मुनि के वो 12 तप होते हैं, अंतरंग बहिरंग तप होते हैं, बाह्य में उपवास अमोदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग करते हैं ना, और उनके स्वाध्याय ध्यान आदि सब तप है। तो वहां कहते हैं तप के कारण निर्जरा, तो हम किसको तप समझते, इसको। परंतु सच में तप क्या है, अंतरंग में स्थिरता और वीतरागता, वो तो बाहर से दिखाई नहीं देती। तो इस पर आरोप आता है, उपचार करते कि इसके कारण निर्जरा हुई, तो हम भोले हैं। क्या कहते हैं, जितने उपवास करेंगे उतनी निर्जरा होगी, मानते हैं ना। यहाँ तप उसी को तप के
तो ज्यादा निर्जरा होगी, हाँ,
परंतु ये इस तप को हमने तप माना है। वीतरागता नहीं होगी तो निर्जरा बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि चार कषाय चौकड़ी बाकी है, मिथ्यात्व है, और बहुत सारे तप किए, बहुत सारे उपवास किए, तो कितनी निर्जरा होगी, वीतरागता है ही नहीं ना। बंद होता है पुण्य का बंद होगा, और जो पहले वाले कर्म बंधे थे थोड़े थोड़े निकल जाएंगे, उसको निर्जरा तो नहीं कहेंगे, उदय कहेंगे उसको। तो उस
तपस्या निर्जरा तो उसके ऊपर आरोप आया,
आरोप आया। हाँ, वो तप किसको, सच्चा तप भी किसको करना, ये वीतरागता है ना। अंतरंग में प्रतपन, प्रतपन विशेष तरह से तपना, ये तप तो अंतरंग में होता है, स्वरूप में लीनता ही तप है,
उसी को तप,
उसी को समाधि कहेंगे, उसी को व्रत कहेंगे, उसी को तप कहेंगे, उसी को आलोचना कहेंगे, उसी को प्रतिक्रमण कहेंगे, उसी को प्रत्याख्यान, सब उसी को कहेंगे। परंतु आरोप किस पर आएगा, बाह्य पर। समय सार में आया है प्रतिक्रमण, यानी जो अज्ञानी है वो कुछ प्रतिक्रमण नहीं कर रहा है, शुभ भाव रूप प्रतिक्रमण, तो कहेंगे तो उसको तो पाप का भी बंध हो रहा है। अब जो अज्ञानी प्रतिक्रमण करता है, जैसे अभी हम रोज करेंगे या जो साल में एक बार करेंगे, हाँ, तो वो क्या है, शुभ भाव हुआ, यानी उसे मैंने पाप किए, वो मेरा दोष हुआ, ऐसा वैसा कह दिया। अब उसके तो कोई वीतरागता नहीं है, तो उसका वो सच्चा प्रतिक्रमण भी नहीं कहलाएगा। तो प्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण का अर्थ क्या होता है, पहले अतिक्रमण किया है, पाकिस्तान ने हमारे भूमि पर अतिक्रमण किया, वो पीछे हटेंगे तो हम कहेंगे प्रतिक्रमण किया है ना। तो हमने क्या है, हमने पूरे अनंत शरीर में अन्य अन्य पदार्थों में अतिक्रमण किया है, ये मेरे है, मैं इनका करता हूं, मैं इनका भोगता हूं, मान लिया है। प्रतिक्रमण कब करेंगे, जब वीतरागता उत्पन्न होगी, मैं जीव हूं, जानने वाला हूं, ये राग वगैरह मेरा, ये प्रतिक्रमण करने का शुभ भाव भी मेरा स्वभाव नहीं है, वो विकार है, और मैं तो शुद्ध भाव हूं, ऐसा कहकर जब अपने में लीन होगे तो वो सच्चा प्रतिक्रमण। फिर आरोप किस पर आएगा, शुभ भाव पर होते हैं। हाँ, शुभ भाव मुनि भी प्रतिक्रमण वगैरह उनके तो डेली रूटीन में होता है, परंतु यहाँ वीतरागता न हो और अकेले मुंह से बोल दिए तो वो प्रतिक्रमण भी ठीक है, उतना शुभ भाव होगा, परंतु जैसे अन्य पुण्य करते हैं वैसे ये एक पुण्य कार्य होगा। पर सच्चा अगर हमें करना है तो ये अंतरंग में शुद्धता हुए बिना इसको हम सच्चा भी नहीं कह सकते, वो उपचार वाला हो जाएगा। ये शुभ भाव रूप प्रतिक्रमण है, शुभ भाव रूप प्रत्याख्यान होते हैं। आप कहेंगे नहीं होते तो छोड़ देंगे, नहीं छोड़ने की बात नहीं है, उससे आगे बढ़ने की बात है। जो कर रहे हैं उसका सही अर्थ समझकर आगे वितरागता उत्पन्न करना हमारा प्रयोजन है। नहीं तो पहले नहीं कर रहे थे, अब कर रहे हैं, उसको छोड़ने की कहां बात है, उसको छोड़कर शुद्ध भाव प्रकट करने की बात है। मुनि भी मुंह से भी बोल देते हैं, प्रतिक्रमण की क्रिया भी करते हैं और फिर बाद में अंतरंग में लीन हो जाते, ध्यान में चले जाते। जब ध्यान में चले जाएंगे तो उनके उन्होंने जो बोला था उसको प्रतिक्रमण कहे, ख्याल है ना। तो समय सार में तो लिखा है ये जो स्वयं में लीन होना वो सच्चा प्रतिक्रमण है। अभी हम आगे बढ़ेंगे, ये संवर किसको कहना, वितरागता उत्पन्न होगी तो हम उसको संवर कहेंगे। उसमें जितने कर्मों का बंध रुक जाएगा, मिथ्यात्व अनंतानुबंधी आदि बंधेगे नहीं, तो हम कहेंगे उतने कर्मों का संवर हो गया, कर्म आना रुक गए। चौथे गुणस्थान में तो 41 प्रकृतियों का बंधना रुक जाएगा। जीव पांचवे गुणस्थान में चला जाएगा तो और 10 प्रकृतियों का बंध रुक जाएगा भाई, और ऊपर के गुणस्थानों में चले जाएगा और अनेक प्रकृतियों का बंध रुक जाएगा। ऊपर ऊपर के गुणस्थानों में कितनी कितनी प्रकृतियों का बंध रुक जाता है, जैसे आठवें गुणस्थान में ऊपर चला जाएगा तो 36 प्रकृतियों का बंध रुक जाता है। जितने ऊपर की भूमिका में जाता है उतने उतने कितनी प्रकृतियों का बंध रुकते रुकते, पहले पहले तो अशुभ प्रकृतियों का बंध रुक जाता है, ऊपर ऊपर जाने का पुण्य प्रकृति भी बंधना रुक जाएगी। बंध रुकेगा तो ही है वो निर्जरा होकर निकल जाएगी, तभी मुक्त होगा ना जी। यदि पुण्य प्रकृति का भी बंध होता रहेगा कायम तो उसमें से छुटकारा कैसे होगा उसका। कितने ही अशुभ प्रकृतियों का उदय भी मिट जाता है बहुत, यानी मोक्ष मार्ग पूरा है, अनुकूल है, अनुकूल अपने लिए करने वाले के लिए, क्योंकि सहज रूप से पाप प्रकृतियों का अनुभाग जो पूर्व में बांधा है, कोई चोर भी है कोई महापापी भी है तो उसके तो अनुभाग जो है वो मंद मंद होता है, क्यों, तत्व का विचार करने लग रहा है। हम तो पहले में पहले कुछ पुण्य करना चाहते हैं, परंतु तत्व विचार में तो महान पुण्य बनता है, पुण्य के लिए नहीं करते हम। अन्य कोई भी जो तप हम मानते हैं ना बाह्य तप, ये स्वाध्याय भी तप है कि नहीं, स्वाध्याय और ध्यान तो उच्च प्रकार के तप है, उपवास से भी इसका नंबर आगे चलता है, यानी ये और ऊपर का तप है ये, परंतु हमें लगता ही नहीं है तप। कोई 10 उपवास करें और कोई 10 दिन स्वाध्याय करें, किसका तप लगता है,
उपवास का,
उपवास का। और बाह्य में उसको ये सारा कुछ वो सब करना भी पड़ेगा, वो मेहंदी लगाएंगे क्या क्या करेंगे, सब वरघोड़ा निकालेंगे, सब लोग उसको कुछ गिफ्ट दे देंगे। यानी हमारी मान्यता क्या पड़ी, वो करना नहीं करना उसकी बात नहीं चल रही है,
बाह्य दृष्टि बहुत,
हाँ हाँ
बाह्य दृष्टि बहुत,
हाँ बाह्य दृष्टि है और लोगों को अज्ञान है उसके बारे में। एक दूसरे को भी पूछते है मैंने इतने किए आपने कितने उपवास किए,
हाँ।
जो नहीं करते उसको ऐसा हीन 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 समझता है, ख्याल में ये तो ऐसे सब चलता है, एक दूसरे को देखा देखी चलते। हमें मूल में वस्तु स्वरूप क्या है उसको समझना है, ये करना कि नहीं करना ये प्रश्न यहाँ नहीं उठता। मूल में मूल अभिप्राय कहाँ पड़े हम, ये सात तत्वों का जो का त्यों श्रद्धान, ये याद रखना, जैसा है वैसा श्रद्धान करना, संवर किसे कहना, निर्जरा किसे कहना, वो किससे होती है ये मालूम नहीं, और हम चाहे जो कुछ करते हैं एक दूसरे को देख देख कर, तो उससे तो अपना कल्याण नहीं होने वाला है ना। जैसे कल मैं किसकी बात कर रही थी, जमा खर्च करते हैं, जैसे पुण्य को पुण्य करना कि नहीं करना या पुण्य को धर्म नहीं मानना की बात चल रही है। आप व्यापार धंधा करते हैं तो जमा और खर्च तो दिखते हैं ना, तो आपने खर्च किया किसके लिए, मान लेते अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए कुछ किया, डेकोरेशन के लिए कुछ किया, और अन्य जो कोई वहां नेसेसरी बातें होती उसके लिए खर्च किया, तो वो किस में डालेंगे, जमा में डालेंगे कि खर्च में डालेंगे, वैसे ही पुण्य और पाप करते हैं वो दोनों खर्चे में डालना है। जमा में तो वितरागता को ही रखना है जमा में, तो ये पुण्य करना कि नहीं करना। एडवर्टाइजमेंट वो करते हैं ना, नेसेसरी है, वहां चलता है धंधा चालू रखने के लिए, तो वो करते हैं परंतु उसको हम खर्चा समझते हैं, वो खर्चे में डालते हैं। ऐसे यहाँ पुण्य करेंगे परंतु कहाँ डालना है, खर्चे में, उससे कोई निर्जरा वगैरह नहीं होने वाली। ये समझना, इतना ही लेना है। जमा खर्चा अपना भी रखना चाहिए भावों का, पुण्य करो पाप करो बंध ही होने वाला है, तो अबंध दशा कैसे होगी, वीतरागता से। संवर निर्जरा कब कहेंगे, वीतरागता उत्पन्न होगी तो कहेंगे। यही बात हम यहाँ तत्वों में देख रहे हैं, अभी हम यहाँ पढ़ेंगे। देखो आश्रव का रुक जाना उसे संवर कहते हैं। आश्रव ने हमने क्या देखे थे, शुभाशुभ भाव, वो रुकेंगे इन्हें शुद्ध भाव प्रकट होगा। आत्मा के अनुभव में लीन रहने पर यानी शुद्धोपयोग में जीव को मोह राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते। पहले उत्पन्न होते थे, अभी वे मिथ्या तो उत्पन्न ही नहीं हो रहा। राग द्वेष में यहाँ पहले में पहले अनंत अनुबंधी लेना, बाकी रहेगी भले, परंतु इसको हम उसको गौण रख के यहाँ बात कर रहे हैं, तो उसको आश्रय और बंध नहीं होते। आश्रयों के रुकने को ही संवर कहते हैं। देखो पहले हम बचपन में सीखते थे तो वहां नाव का उदाहरण देते थे, आपने सुना है, जैसे पानी में नाव है तो उसमें कोई छेद हो गया नीचे तल में, और वो छेद में से पानी आ रहा है, तो ये पानी का आना वहां क्या कहेंगे उसको, आश्रय। हाँ, और वो पानी बहुत निकाल निकाल कर बाहर फेंक दिया, क्या कहेंगे उसको, निर्जरा। संवर कब कहेंगे, वो होल बुझा दिया हाँ। तो संवर हो जाएगा, और जो है उसको निकाल देंगे वो निर्जरा हो जाएगी, बात है, सब निकल जाएगा तो मोक्ष। किसको होगा, नाव को क्या पानी को, नाव को होगा, हमारा क्या होगा वो दृष्टांत, दृष्टांत है, सच में लोग समझते आश्रम क्या हाँ ऐसे बोले होते हैं, आश्रम क्या होता है, आश्रम क्या होता है, तो पानी का आना वो आश्रम है, और वो होल बुझा देना वो समर है, ऐसा ही कहते हैं। तो ये बात कह रहे थे, यहाँ न्यूयॉर्क में भी चर्चा हुई थी, तो समझा रहे थे किसी को, तो ऐसे भी लोग मानने वाले भोले होते हैं। तो हम जो अभी इंडिया में और मेरे बचपन में जो सुना था उस पर से हम बता रहे, तो एक बहन बहन को इतना गुस्सा आया, आप हमको क्या समझते हैं, हम ऐसे थोड़े मानते हैं, आपकी बात ही कहाँ उठाई है, हाँ ऐसे उसने बोला। अरे हम किसी को ऐसे टोकते नहीं है, परंतु ये लोगों की कहाँ भूल होती है, दृष्टांत को ही हम उसी में आश्रय बंध समझते हैं, और आश्रय बंध यहाँ हो रहा है वो समझते नहीं है, वो तो समझाने के लिए दृष्टांत है। तो हमने नाव को ही आश्रय है, नाव का ही संवर होगा, नाव का ही मोक्ष होगा ये तो वो समझाया है। वैसे यहाँ पर कर्म आ रहे थे हर समय इतने, और अभी थोड़े रुक गए, थोड़े थोड़े रुकेगे, वहाँ समझाने के लिए हमने पूरा बंद कर दिया।
इतना गुस्सा इसलिए आते हैं, उनकी मान्यता इतनी दृढ़ है कि जो लोग धर्म के नाम पर जो आज तक करते आते हैं ना, उस पर बहुत धक्का लगता है,
इसलिए उनको बहुत गुस्सा आता है। अभी वहाँ भी एक बहन तो इतने गुस्सा हो गई थी, इतना कि विवेक खो बैठी कि सामने कैसे प्रश्न करना चाहिए, कि बहुत, क्योंकि आज तक उसको सब खम्मा खम्मा करते थे उसको, इतने व्रत किए इतने तप किए, और अभी उसके विरुद्ध बात सब लोगों को, और बेस से समझाइए, हमें कोई जबरदस्ती तो करते नहीं, अभी ये आप ही निर्णय लो कहते हैं, तो अंदर से ऐसा हो जाता है क्रोध, यानी समझना चाहते नहीं है, ख्याल है, अभी क्या करे, किसी जीव के कैसे परिणाम कैसे कैसे होते हैं। ठीक, देखो आश्रम के रुकने को ही संवर कहते हैं। अब इसमें भी भाव संवर और द्रव्य संवर है। भाव संवर अर्थात शुभाशुभ भावों का उत्पन्न न होना। देखो ये पर्याय एक समय की होती है, शुभ भाव हो अशुभ भाव हो यानी पुण्य पाप कुछ भी हो, एक एक समय लेके ये पर्याय चलती है। तो जो ऑलरेडी उत्पन्न हुई है उसका क्या नाश करेंगे? जो उत्पाद हुआ है एक समय में नाश होने ही वाला है, तो जब हम कहेंगे राग को छोड़ो, राग का नाश करो, उसका क्या नाश करेंगे? वो तो ऑलरेडी आया है, तो उसका नाश करो का अर्थ क्या है? आगामी पर्याय में वो उत्पन्न नहीं होगा तो हम कहेंगे नाश करेंगे। जैसे क्रोध कम करो, जो ऑलरेडी है उसको क्या कम करेंगे? नेक्स्ट पर्याय में क्रोध नहीं उत्पन्न होगा तो हम कहेंगे क्रोध का उसने छोड़ा, क्रोध को छोड़ दिया। ये बात ख्याल में आई थी? ये शुभाशुभ भावों का उत्पन्न न होना, पहले मिथ्यात्व 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 अनादि से चल रहा था हर पर्याय में, समय दर्शन होते अब मिथ्यात्व इज नो मोर, तो नो मोर को कहेंगे इसका नाश किया। कि जिस पर्याय में है वहां तो है, उसकी अस्थि है। नास्तिक कब कहलाएंगे? जब सम्यक तो उत्पन्न होगा तो मिथ्यात्व तो उत्पन्न नहीं हुआ उसको कहेंगे मिथ्यात्व का नाश हुआ। तो यही बात यहां कहते हैं, शुभाशुभ भावों का उत्पन्न न होना, परंतु ये तो नास्तिक का कथन है। अस्थि से क्या होगा? कुछ तो है ना वहां उत्पन्न हुआ। तो कहते हैं कि वीतरागता की यानी शुद्धि की उत्पत्ति होना भाव संवर है। उत्पाद वे हर समय में चल रहा है, नए पर्याय का उत्पत्ति वही है पूर्व पर्याय की नास्ति यानी व्यय। जिस समय प्रकाश की उत्पत्ति हुई उस समय अंधकार नहीं रहा, नहीं रहा को क्या कहेंगे? उसका नाश हुआ। नहीं तो हम क्या कहेंगे? पहले अंधकार को बाहर निकालो और फिर प्रकाश को अंदर लाओ, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। प्रकाश की उत्पत्ति होना ही अंधकार का व्यय है, समय एक। वैसे ही यहाँ वितरागता की उत्पत्ति होना ही मिथ्यात्व का नाश है, तो उसको हम भाव संवर कहेंगे। वितरागता की कहो या शुद्धि की उत्पत्ति, तब कहेंगे अशुद्धि का नहीं रहना, तो उसको क्या कहेंगे? भाव संवर। ये जीव की अपेक्षा से वर्णन किया। द्रव्य संवर किसको कहेंगे? नवीन कर्मों का आना रुक जाए जाना। पहले क्या कहते? कर्मों का आना, उसको हमने आश्रव कहा। कर्मों का आना रुक जाना उसको संवर कहा। उसी लिए वो नाव का उदाहरण दिया था ना। अभी तो स्थूल रूप से इतना ही याद रखना, उसके विस्तार में जाने पर ज्ञात होगा कि मिथ्यात्व का आश्रव रुकने पर अन्य आश्रव चालू रहते हैं। हमने पांच देखे आश्रव, कौन कौन से? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषार, योग। ये आश्रव रुकने का भी क्रम यही है। पहले मिथ्यात्व का आश्रव रुक जाएगा, फिर अविरति संबंधी आश्रव रुक जाएगा, फिर प्रमाद रुक जाएगा, कषाय रुकेंगे, बाद में योग रुकेगा। अब गुणस्थानों में भी देखा है, पहले गुणस्थानों में पांचों ही है, चौथे गुणस्थान में मिथ्यात्व नहीं है परंतु चार आश्रव है, चौथे से आगे चला, चौथे पांचवे में भी विरता विरत है, परंतु छठे सातवें की बात करेंगे हम, छठे में प्रमाद भी है, सातवें के आगे यानी छठे में प्रमाद भी है, कषाय भी है, योग भी है, सातवें से आगे कषाय संज्वलन कषाय है और योग है, दसवें तक। दसवें में कषाय भी मिट गया, ग्यारहवें बारहवें तेरहवें में योग है वो भी मिट गया, तो चौदहवें में कुछ नहीं है। पूर्ण संवर वहां हो जाएगा, पूर्ण संवर हो, परंतु ये मिथ्यात्व का हुआ तो हम कहेंगे संवर शुरू हो गया। यहां मिथ्यात्व संबंधी संवर है, पहले बंधे हुए की निर्जरा चालू हो गई है, परंतु वहां आश्रव बंध भी चल रहा है। कौन सा आश्रव बंध है? इन संबंधी आश्रव बंध चल रहे ना। देखो पांच थे, पांच का आश्रव और पांच संबंधी उसके कारण बंद हो रहा था, इसका संवर हुआ यानी इसका आश्रव रुक गया, चार का चल रहा है, चौथे वाले को इन चार से इतना आश्रव भी है और इनके कारण बंद भी है। आगे आगे जाएगा तो उतना उतना आश्रव रुकेगा और उतनी निजरा बढ़ेगी, परंतु बंद है वहां पर। ग्यारहवें बारहवें तेरहवें वाले को भी योग है तो वहां एक साता वेदनीय नाम का कर्म एक समय के लिए आएगा और चला जाएगा। कहा कौन से कर्म आते उसकी बात अभी अपना ये विषय नहीं है, समझना इतना ही है हमें। क्रम क्रम से आश्रव रुकते जाएंगे, सोमवार बढ़ता जाएगा और फिर निर्जरा भी बढ़ती चली जाएगी। ये बात ख्याल में आई? और वितरागता की जितनी वृद्धि होगी उतना उतना संवर बढ़ेगा, निर्जरा बढ़ेगी। एक स्टेज ऐसी आएगी कि पूर्ण संवर हो गया है और फिर निर्जरा भी पूर्ण हो चली जाएगी और मोक्ष हो जाएगा। यही क्रम है ना, हमने वो टांकी देखी थी पानी से भरी हुई, उसमें पांच नलों से पानी आता, यही पांच नल है। और फिर पांच नल से जाता था, एक एक नल बंद करेंगे और नीचे से पानी बढ़ाएंगे, नीचे के नल बड़े करेंगे तो क्या होगा, लेवल कम होती चली जाएगी। तो एक 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 बंद हो जाएंगे, पूर्ण बंद हो जाएगी तो जो है उतना चला जाएगा, पूर्ण खाली हो जाएगी टंकी। ऐसे ही यहां समझना। अभी निर्जरा तत्व को देखते हैं हम। शुद्धि की वृद्धि होना इसे भाव निर्जरा कहते हैं, शुद्धि की उत्पत्ति होना उसको संवर कहा था। वितरागता की उत्पत्ति, उत्पत्ति यानी स्टार्टिंग हुआ, बिगिनिंग हो गई, उसको क्या कहा था, संवर। वो बढ़ जाना उसको कहेंगे निर्जरा। कौन सी? भाव निर्जरा। भाव निर्जरा में कषायों का उत्तरोत्तर अभाव, उत्तरोत्तर यानी आगे चलकर और मंदता की ओर चले जाना, मिटते चले जाना, उसको कहेंगे अभाव। और वितरागता की वृद्धि, वृद्धि होगी। हम देखेंगे चौथे से पांचवें गुण स्थान में और एक कषाय चला गया, अप्रत्याख्यान भी चला गया। पांचवें से छठे सातवें में गए तो और एक चला गया। ऐसे कषाय कम होते चले जाएंगे और वितरागता बढ़ती चली जाएगी। कर्मों के बारे में कहना हो तो अभी ये द्रव्य की बात, पूर्व में बंधे हुए कर्म जीव के वितराग परिणामों के कारण बहुत भारी मात्रा में खिर जाते हैं। किसके कारण? वितरागता के कारण। उपवास आदि बाह्य तप के कारण नहीं कहा, उपचार आएगा उस पर, निकल जाते हैं। जीव उन कर्म फलों को नहीं भोगता, उसे द्रव्य निर्जरा कहते हैं। कर्मों का अधिक मात्रा में खिर जाना उसे द्रव्य निर्जरा कहते हैं। संवर अर्थात नवीन कर्म नहीं आते, और निर्जरा अर्थात पूर्व में जीव के साथ बंधे हुए कर्म बड़ी संख्या में निकल जाते, खिर जाते हैं। इसलिए संवर और निर्जरा के कारण जीव से बंधे हुए कर्म उत्तरोत्तर कम होते चले जाते हैं। ऊपर ऊपर के गुणस्थानों में चला जाता है तो ये कर्म भी खिरते जाते हैं ना। बंध तो अनेक कर्म प्रकृतियों का रुकता है, कुछ विशिष्ट प्रकृतियां बनती भी है, परंतु उनका खिरना अधिक चलता है, स्थिति भी घटती चली जाती है। और इस तरह से ऊपर के गुणस्थानों में अत्यंत कम कर्म रह जाते हैं। एक पोजीशन ऐसी आती है कि सभी बंधना रुक गया, योग भी चला गया और जितने कर्म है वो सारे ही निकल कर उसका क्षय हो जाता है और जीव की मोक्ष अवस्था प्राप्त होती है। ये मोक्ष तत्व की बात हम कल देखेंगे। बोलो 2400 भगवान की जय।